श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 32। आत्मा औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं बा यदि बा दुःखं सा योगी परमो मतः। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मा अपनी औपमेन तुलना से सर्वत्र सभी जगह समम समान रूप में समान रूप से पश्यति देखता है यह जो अर्जुन हे अर्जुन सुखं सुख वा अथवा यदि यदि बा अथवा दुःखम दुख सा वह योगी जोगी परमः परमपूर्ण मतः माना जाता है। ये श्लोक का अनुवाद, हे अर्जुन, वो पूर्ण जोगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। आप भी बोलिए मेरे साथ, हे अर्जुन, वो पूर्ण जोगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण जोगी होता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों की परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंधों को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक तापों दुखों को भोगता है, और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है इसलिए वो कृष्ण ज्ञान की सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। नाच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः। दूसरा शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का सखा हो जाता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता है, अपितु अन्नों के लिए भी चाहता है। वो अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वो अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मन्नति में ही रुचि रखने वाली योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि एक वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने के प्रयास करना चाहता है। आत्मोपमेना सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। भगवद गीता में भगवान कर्मयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योग एवं भक्ति, शुद्ध भक्ति का वर्णन किए हैं। ये षष्ठ अध्याय में भगवान अष्टांग योग का योग के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में समझा रहे हैं। अष्टांग योग का मतलब क्या होता है? अष्ट अंग, ये शब्द से हमें पता चलता है ये योग का अर्थ क्या है। अष्ट का मतलब क्या है? आठ। अंग का मतलब, अंग का मतलब क्या है? अंश। ये जो योग है, ये योग का आठ अंग या अंश होता है। वो आठ अंश या स्तर क्या है? आठ जो स्तर अष्टांग योग में होता है उसे याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि। कितना हुआ है? आठ हुआ है। तो धीरे धीरे एक के बाद एक स्तर में योगी उन्नति साधन करते हैं। शुरू होता है यम से। याम का मतलब है बाहर का जो शुद्धता, बाहर का मतलब शरीर का, और शरीर का अंदर में जो है उसका भी। जैसे केवल शरीर साफ रखने से ही और साफ कपड़ा पहनने से ही हम साफ नहीं बन जाते हैं, ये शरीर साफ सुथरा नहीं हो जाता है। शरीर कब साफ होता है सही ढंग से? जब हमारा खाना भी शुद्ध होता है, क्योंकि जो हम खाते हैं उस खाना से हमारा शरीर बनता है, है ना? शरीर किससे बना हुआ है? कोष से बना हुआ है। और कोष का उत्पत्ति कैसे होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे कोष शरीर का कोष का उत्पत्ति होता है। तो अगर हम गंदा खाना खाया तो कोष का स्थिति कैसा होगा? जो गंदा खाना खाता है उसका कोष कैसा बनेगा, शुद्ध बनेगा या उसका कोष भी गंदा बनेगा? इसीलिए मांस मछली ये जो गंदा खाना है ये खाना नहीं चाहिए। मांस मछली अंडा कोई बोल सकता है ये गंदा क्यों है, मैं बोलूंगा ठीक है तीन दिन एक मांस का टुकड़ा आपका घर में रखिए, क्या हाल होगा घर का? आप उस घर में रह सकेंगे? तो ये हमारा पेट में जाकर भी उसको क्या होता है, पचन होता है। हमारा जो हजम जो है प्रक्रिया, वो हजम का क्या होता है, हजम कैसे होता है, हजम का और एक नाम पचन भी बोलता है ना, पचन। पचन का मतलब, पचन का मतलब क्या होता है, सड़ना। ओ हिंदी में पचन कहते हैं, पचा हुआ, सड़ा हुआ। तो हमारा पेट में जाके जो हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में वो पचता है। तो आप सोचिए मांस का टुकड़ा एक अगर आपका घर में 5-7 दिन सड़ रहा है, पच रहा है, तो आपका घर का हाल कैसा होगा? आप रह सकेंगे वहां? तो वो मांस का टुकड़ा अगर पेट में सड़ रहा है तो पेट का हाल कैसा होगा? ये थोड़ा विचार करना है। और केवल वो पच ही नहीं रहा है, सड़ ही नहीं रहा है, वो जो मांस का जो कोष है, सड़ा हुआ कोष से हमारा शरीर का कोष बन रहा है। इसका अर्थ क्या होता है, जो योगी है जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए उसका खाना खाने के बारे में उसको बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे शरीर का नुकसान हो, शरीर का कोई बुरा हाल हो। तो ये है यम, शरीर को बाहर से और अंदर से साफ रखना। उसके बाद नियम, नियम का है मन का पवित्रता, शुद्धता। मन में अगर बुरा भावना आया तो मन का हाल कैसा होता है, हमको प्रभावित कर देता है ना, हमारा चेतना का, हमारा चेतना हमारे चिंतन के द्वारा प्रभावित होता है। तो हमारा चिंतन अगर शुद्ध नहीं होता तो हमारा चेतना का हाल कैसा होगा, चेतना भी अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए मन में, मन का भी शुद्धता वो है नियम। उसके बाद आसन, आसन का मतलब, आसन का अर्थ क्या होता है, आसन जैसे ये एक आसन है, बैठने को जो जगह है उसे आसन कहा जाता है। तो ये शरीर रूप यंत्र में आत्मा बैठा हुआ है ना। जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं पहले आपको क्या करना पड़ता है, गाड़ी चलाने के लिए सीट में जाके बैठना पड़ता है। अगर सीट में नहीं बैठा तो गाड़ी आप चला सकेंगे? और सही ढंग से अगर सीट में नहीं बैठा, अगर स्टीयरिंग व्हील के सामने नहीं बैठकर वो बगल वाला सीट में बैठ गया तो आप क्या गाड़ी चलाना सकेंगे? नहीं। तो वैसे ही सही ढंग से ये शरीर रूप यंत्र में बैठना, आत्मा को शरीर सही ढंग से ये शरीर रूप यंत्र में बैठाना। जब आत्मा ये शरीर रूप यंत्र से सही रूप से बैठता है तब ये शरीर को वो सही रूप से चला सकता है। तो देखिए ये यंत्र जो है, यंत्र का उद्देश्य क्या होता है, जैसे एक गाड़ी है, मोटर कार है, हम मोटर कार क्यों रखते हैं, आदमी को दिखाने के लिए, हाँ, दूसरे को दिखाने के लिए क्या हम मोटर रखते हैं? नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। हम तो गाड़ी खरीद के क्या केवल घर में नहीं रख देते हैं, गैराज में नहीं रख देते हैं, हम गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे होता है, गाड़ी का सदुपयोग कैसे होता है? हाँ, जहां हमको जाना है वहां तुरंत पहुंचना। हाँ, तो आप देखिए, ये शरीर भी एक यंत्र है। हाँ, एक मोटर कार जैसे है, मोटर कार से भी बहुत अच्छा यंत्र है, एरोप्लेन से भी बहुत अच्छा यंत्र है। इस यंत्र को अगर हम सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम एक लोक से, एक ग्रह से और एक ग्रह में जा सकते हैं ये शरीर के द्वारा। केवल एक ग्रह से और एक ग्रह ही नहीं, हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, है ना। ये मनुष्य शरीर का ये विशेषता है, और किसी शरीर में ये संभावना नहीं रहता है, केवल ये संभावना मनुष्य शरीर में ही मिलता है। ये मनुष्य शरीर, इसीलिए मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर जब हमें मिला है, ये शरीर के सदुपयोग हम अगर कर सकते हैं तो हम इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हैं। तो आप बताइए, ये शरीर एक गाड़ी जैसा है ना, गाड़ी या एक एरोप्लेन, उससे भी अच्छा एक यंत्र है, इससे भी अच्छा एक यान है। तो इस शरीर को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये शरीर को ठीक रूप से, सही रूप से हम ये शरीर में बैठना, तो उसका वो जो प्रक्रिया है उसको आसन कहा जाता है। आसन, बैठना, जो आसन का जो क्रिया होता है योग में, वो केवल उसके कारण होता है, शरीर के तंदुरुस्ती के लिए ही नहीं, परंतु यह शरीर का सदुपयोग के लिए। उसके बाद योग का अगले वाला अंग क्या है, अष्टांगों का चौथा अंग क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, प्राण को, प्राण वायु जो है, प्राण वायु को सही रूप से उसको संचालन या नियंत्रण करना। प्राण शरीर में पांच प्रकार के वायु होता है, उस पांच प्रकार की वायु के द्वारा शरीर का सारे कार्य होता है। वो पांच वायु क्या है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो इसमें से सबसे जरूरी है प्राण वायु। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, जय श्री श्री गौनिताय की जय। सबसे जरूरी है प्राण वायु। क्यों, आप सोचिए, जब प्राण निकल जाता है तो क्या होता है, खत्म हो जाता है सब कुछ, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में प्राण है या ये शरीर में जान है या शरीर में चेतना है, शरीर काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों, आत्मा है उसके कारण। जब आत्मा निकल जाता है शरीर का मृत्यु होता है। तो हम क्यों कहते हैं कि प्राण निकल गया है, हम तो नहीं कहते कि आत्मा, ऐसे असल में कहना चाहिए था कि आत्मा निकल गया, परंतु हम नहीं कहते कि आत्मा निकला है, आत्मा चला गया है, हम क्या कहते हैं, प्राण निकल गया है। तो क्यों हम प्राण निकल गया कहते हैं, क्योंकि ये जो प्राण वायु जो है, इस प्राण वायु आत्मा को शरीर में रखता है, ये शरीर में आत्मा को रहने का जो स्थिति है वो संभव होता है प्राण के द्वारा। और कैसा होता है, हम ये श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, ये जो श्वास का जो प्रक्रिया है ये भी प्राण के द्वारा होता है। हम ये जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये जो प्रक्रिया है, एक या दो प्रक्रिया, लेना और छोड़ना, ये दो है या उससे और कुछ है? दो है और एक है, तीन है। एक लेना, अंदर में रखना और निकलना। हाँ, ये जो तीन प्रक्रिया है इसको क्या कहता है? रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब निकल देना, पूरक का मतलब अंदर लेना, पूर्ण करना, भर देना, और कुंभक का मतलब है उसको पकड़ के रखना। तो ये जो तीन प्रक्रिया है, हम स्वाभाविक रूप से हम क्या करते हैं? रेचक और पूरक करते हैं। परंतु योगी क्या करता है? योगी और सांस का जो प्रक्रिया जो है उसको बंद कर देता है कुंभक के द्वारा। तो ये प्रक्रिया जो है इसको प्राणायाम कहता है। अच्छा, इस प्रक्रिया का जरूरत क्या होता है? योग का उद्देश्य क्या होता है? योग का जो पहला सूत्र है वो क्या है? अथ चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का उद्देश्य क्या है? चित्त का जो वृत्ति है, चित्त का मतलब मन, और मन का वृत्ति क्या है? भावना। तो चित्तों का जो वृत्ति है, मन का जो भावना है, उसको निरोध करना, रोकना, बंद करना। क्योंकि मन के द्वारा ही हमारा चेतना बाहर की ओर भाग रहा है और उसके कारण हमारा ये भौतिक बंधन का सृष्टि हुआ है। तो इस भौतिक बंधन के कारण हमें इतना मुश्किल हो रहा है, कठिनाई दिखाई दे रहा है। तो ये भौतिक बंधन के कारण जो मन के द्वारा ही हो रहा है उसको संभालना, उसको निरोध करना, उसको रोध करना, उसको रोकने का जरूरत क्या होता है? क्योंकि हम यहां से अगर अपना चेतना को उस तरफ भगवान की ओर लेना चाहते हैं तो इसको रोकना पड़ेगा। तो ये उसके कारण योगी क्या करते हैं? चेतना को अंदर लाने का कोशिश करता है। चेतना, आप सोच देखिए, चेतना कहां जा रहा है? चेतना के अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है? अब चेतना स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत में हमारा चेतना बहिर्मुखी है। तो हमारा जो ये श्वास का जो प्रक्रिया है उसके साथ हमारा मन का एक बहुत संयोग है, बड़ा संयोग है। वो संयोग कैसा? देखिए, हमारा श्वास, हमारा मन की भावना जैसे होता है उसके साथ साथ हमारा श्वास भी, श्वास का भी गति होता है। जैसे जब मन में जब बहुत उलझन होता है तब श्वास कैसा होता है? द्रुत होता है, तेज हो जाता है। और मन जब शांत रहता है तब श्वास कैसा होता है? धीरे धीरे होता है, है ना? तो ये जो है श्वास का जो गति जो है इसके साथ मन का एक गहरा कनेक्शन है, है ना? तो आप देखिए, मन के प्रभाव से हमारा श्वास प्रभावित होता है। तो इसका जो हम अगर उल्टा रूप से देखेंगे, श्वास के प्रभाव से मन का भी प्रभावित कर सकते हैं हम। तो इसलिए योगी क्या करते हैं? श्वास का जो क्रिया है उसको संभालते हैं, और उसका वो प्रक्रिया का नाम क्या है? प्राणायाम। तो ये प्राणायाम में जैसे हम विचार किया, तीन प्रक्रिया होता है, रेचक, पूरक और कुंभक। तो रेचक पूरक तो चलता ही रहता है, हम लोग तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो चल रहा है। परंतु योगी क्या करते हैं? ये सांस को अंदर रख लेते हैं, कुंभक। हम तो ज्यादा से ज्यादा दो मिनट तक ऐसे श्वास रोक के रह सकते हैं, परंतु जो योगी योग प्राणायाम का जो सिद्धि जब होता है तो वो योगी कैसे उन्होंने वो योगी तब केवल महीना भर नहीं साल भर भी अपना श्वास को रोक लेते हैं। ये संभव होता है। एक दो साल के बाद एक श्वास लिया तो प्राणायाम का मतलब है मन को संभालने के लिए, मन को जो वृत्ति है उसको निरोध करने के लिए, प्राण का जो गति है मतलब श्वास का जो क्रिया है उसको सही रूप से रोक लेना। अच्छा, जब प्राणायाम सिद्धि हो गए हैं तब जो अष्टांग जो का पंचम अंग क्या होता है, पंचम अंग प्राणायाम, प्राणायाम के बाद क्या है, प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है, प्रत्याहार संवरण कर लेना, वापस कर लेना। मैं जो बताया था क्या हो रहा है ऐसे भौतिक जगत में, हमारा चेतना का मन की माध्यम चेतना बाहर जा रहा है तो हमको उसको खींच के अंदर लेना चाहिए। तो अंदर लेने के लिए हमें पहले क्या करना है, जो बाहर जो जा रहा है उसे रोकना चाहिए हमारे चेतना को। तो वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद ध्यान, मन को एकाग्र करना को ध्यान कहा जाता है। मन ऐसे जा रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, मन का वृत्ति, तो हम मन का वृत्ति को संवरण करके इकट्ठा करके हम एक जगह में उसको प्रयोग करना। हम बोलते हैं ना मन को एकाग्र करना चाहिए, जब हम पढ़ते हैं तो मन को क्या करना चाहिए, मन अगर इधर उधर भागेगा तो क्या हम कुछ पढ़ सकेंगे, ना तो कुछ याद कर सकेंगे। पढ़ते समय हमको क्या करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, एकाग्रता से पाठ अध्ययन करना चाहिए। एकाग्र का मतलब एक जगह में मन को स्थिर रखना, तो वो उसको ध्यान कहा जाता है। हम कहते हैं ना ध्यान देके सुन रहा है ना, ध्यान देना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या होता है, मन को उस विषय में अर्पण करना। ध्यान के बाद धारण, जब मन जब एकाग्र होकर जब स्थिर स्थिति हो जाता है, मन को मतलब अंतर्मुखी जब हो जाता है तो उस अवस्था को धारण या धारणा कहा जाता है। और उसके बाद देखिए चेतना को हम अंतर्मुखी कर लिया तो हमारा अंदर में अंतर में कौन है, अंतर्यामी है ना। तो वो अंतर्यामी कौन है, भगवान है। तो हम अगर हमारा चेतना को अंतर्मुखी किया तो हम किसको दर्शन करेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे। ये है अष्टांग योग का प्रक्रिया। तो इस षष्ठ अध्याय में भगवान, भगवद गीता का षष्ठ अध्याय में भगवान उसके बारे में समझा रहे हैं अर्जुन को। जो योगी है उसका आचरण कैसा होता है, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इसका अर्थ, हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी हैं जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। सर्वत्र समं पश्यति, अर्थात हर व्यक्ति को अपने समान भाव से देखते हैं। इस भावना को क्या कहा जाता है? सहानुभूति, सह अनुभूति, अर्थात दूसरे का भावना कैसा हो रहा है, दूसरे के मनोभाव कैसा हो रहा है, उसको अनुभव करना। जो योगी है, पूर्ण योगी है, उसको मनोभाव कैसा होता है, और दूसरे का जो मनोभाव है उसको अपना मनोभाव के रूप में देखते हैं। अर्थात दूसरे का जब सुख होता है तो उनका सुख अनुभव होता है, दूसरे का जब दुख होता है तो उनका दुख का अनुभव होता है। इस अवस्था को, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? हाँ, इस स्थिति को कंपैशन कहा जाता है। कंपैशन का मतलब समव्यथी, ये हिंदी में ये शब्द आता है। ये कंपैशन, अंग्रेजी कंपैशन शब्द का हिंदी प्रतिशब्द क्या है? कंपैशन, हाँ, जैसे सहानुभूति, शीलता, समव्यथा, समव्यथी, सम अच्छा क्या आम गति, आम अच्छा ठीक है, आप समझ गए ना। कंपैशन मतलब दूसरे का जैसे अनुभव है उस अनुभव को अनुभव करना। जैसे दूसरे का जब कष्ट होता है तो उनका भी कष्ट होता है, जब दूसरे का सुख होता है तब उनका भी सुख होता है, तो उसके कारण वो क्या करते हैं, वो दूसरे को दुख का निवृत्ति करके सुख प्राप्ति का पंथा प्रदर्शन करते हैं। तो यही भगवान यहां कह रहे हैं। ये योगी का मनोभाव कैसा होता है, योगी का दर्शन कैसा होता है, ये भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं। तो तीन चार श्लोक में हम जो विचार किया, देखिए, एक तो ये था सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में, मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। योगी का दर्शन क्या कैसा होता है? हर जगह भगवान का ही दर्शन करते हैं। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति तस्साहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। उसके बाद सर्वभूत स्थितं जो मांग भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सर्वत्र स्थित रहता है। और आज का ये श्लोक, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी हैं जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की, उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो ऐसे योगी का दर्शन कैसा होता है, योगी का मनभाव कैसा होता है, यहां भगवान वर्णन कर रहे हैं। और अंत में हम देखेंगे इस अध्याय का अंत में, कल जैसा थोड़ा सा विचार हुआ था प्रश्न उत्तर के समय में, योगी और भक्त में अंतर क्या है। योगी का जो पूर्णावस्था जो है, योग का पूर्ण सिद्धि जो है, वो अवस्था ही भक्ति है। उसके कारण इस अध्याय को अंत में भगवान कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते जो माम सामे युक्त तमो मतः। अर्थात समस्त योगियों में से वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धापूर्वक प्रीतिपूर्वक मेरा भक्ति करता है। मद गते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते जो माम, भजते का मतलब क्या है, भजन करता है या भक्ति करता है। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, सामे युक्तो तमो मतः, वही सबसे अंतरंग रूप में मेरा साथ युक्त हुआ है। तो योग का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ युक्त होना। तो भगवान यह कह रहे हैं कि युक्त तमो मतः, युक्त युक्त तरह युक्त तमः, मतलब सबसे सबसे गहरा संपर्क से जो मेरा साथ युक्त है वो है श्रेष्ठ योगी। वो कौन है, भजतांग प्रीतिपूर्वकम, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, अष्टांग योग की, अष्टांग योग का व्याख्या यह है, पतंजलि का योग सूत्र है। योग सूत्र पतंजलि ही योग शास्त्र का प्रणयन किए हैं। ये योग शास्त्र का प्रणयन पतंजलि ने किए हैं। हाँ, धारण की बात है समाधि। समाधि का मतलब समाधि, अर्थात वो स्थिति में क्या होता है, भगवान के साथ जब संपर्क बन जाता है तब बाहर का कोई चेतना नहीं रहता है। और हाँ, योग का पूर्णता है भक्ति में। भक्ति बिना योग संभव नहीं है। और योग का असल उद्देश्य है भक्ति। यही वर्णन भगवत गीता में भगवान कर रहे हैं, क्रम के अनुसार कर रहे हैं। भगवान एकदम सीधा नहीं बोल रहे कि भक्ति ही सब, भगवान बहुत सारे विचार करके अंत में दिखाते हैं मेरा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ता माम अभिजानाति, भक्त ही केवल हमको जान सकता है। भगवान कह रहे भक्तोसी से सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, उसके कारण मैं इस रहस्य को उद्घाटन कर रहा हूं तुम्हारे सामने। और भी भगवान कह रहे हैं क्या कि ये योगो नष्ट परंतपः स एवायं मयाति अद्य योग प्रक्त स एवायं मया ते अद्य योग प्रक्त पुरातनः भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। रहस्य का मतलब जो गोपन रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, सबके समक्ष उसको नहीं लाते हैं, उसको रहस्य कहा जाता, जो छिपा के रखा जाता है। तो ये जो भक्ति जो है, ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान को ये एक रहस्य है, इसको छिपा कर रखा गया है। परंतु किसके सामने इसको प्रकाश हो रहा है, भगवान किसके सामने इसको प्रकाश करते हैं, जो भक्त है उसके लिए। और भक्ति का शुरू कैसे होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जितने सारे धर्म हैं उसको त्याग करके तुम केवल मेरा शरण ले लो, क्योंकि असल धर्म है भगवान का ही शरण लेना। और ये जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं, भगवान के सामने, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तभी हमारा भक्ति का शुरू होता है। हाँ, आपका प्रश्न है? Where is the microphone, cordless one?
गुरुजी, हमारा प्रश्न है कि प्राण बाहर निकल जाता है, प्राण वायु जो है बाहर गई और फिर अंदर आई, बाहर गई और फिर अंदर आई, तो ये आती कहाँ से?
हाँ,
आती कहाँ से, पैदा कहाँ से है?
पैदा?
हाँ,
किसका?
इसका जो पैदा कहाँ से हुई, क्योंकि आना जाना तो महसूस होता है।
नहीं, मतलब पैदा मतलब आत्मा का पैदा,
आत्मा प्राण का,
प्राण का पैदा।
हाँ, प्राण जो वायु अंदर जा रही और बाहर निकाल रही।
हाँ, ये प्रकृति का 8 उपादान है, भूमि रापो अनलो वायु। हाँ, ये जो वायु जो है, हाँ, इसमें से प्राण एक प्रकार की वायु है।
अच्छा।
पंच वायु है, 5 प्रकार की। ये जो भूमि आपो अनलो वायु, मिट्टी पानी अग्नि वायु, हाँ, तो वायु में से एक है प्राण। ये भौतिक पदार्थ है, प्राण एक भौतिक, जैसे मिट्टी, हाँ, ये प्रकृति का एक उपादान है, हाँ, एक भौतिक पदार्थ है, वैसे प्राण भी एक भौतिक पदार्थ है, वायु है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके,
हरे कृष्ण स्वामी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। कृष्ण को योगी पुरुष भी कहा गया है।
हाँ,
भगवान कृष्ण को योगी पुरुष भी कहा गया है।
योगी पुरुष?
हाँ,
देखिए भगवान, हाँ, योगी पुरुष नहीं, भगवान का नाम है जोगेश्वर। जत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर सारे योगियों का ईश्वर है, भगवान योगी नहीं है, योगियों का आराध्य है भगवान। योगियों ने क्या करते हैं? भगवान को ध्यान करते हैं। भगवान योगेश्वर है। योग का अगर, हाँ, योग, योग का उद्देश्य अगर युक्त होना है तो जिनके साथ युक्त होना है वो है भगवान, उसके कारण भगवान है योगेश्वर। हाँ? हरे कृष्ण। हाँ, ही हैज अ क्वेश्चन।
महाराज, हमारे जो परमात्मा है वो हमें सब, हमारे अंदर रहते हैं, हमें सबसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी हमें इतना तकलीफ के अंदर से लाके क्यों जाते हैं? क्यों वो हमें पहले उनके पास लेके नहीं जाते, उनका दर्शन नहीं कराते?
तुम अगर अपने लिए तकलीफ चाहते हो तो भगवान क्या करेंगे? तुम अगर बोलते हो कि हम तकलीफ चाहता है और ज्यादा तकलीफ चाहता है, हाँ? है ना, ये तकलीफ तो भगवान नहीं दे रहे हैं, हम खुद उसको, हाँ, इनवाइट करके ला रहा है। भगवान कह रहे हैं कि, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे सारे तकलीफ से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, तुम मेरे शरण ले लो। और हम अगर बोलेंगे नहीं, हम भगवान को शरण नहीं लेंगे, हाँ, तो हमको क्या मिलेगा? हाँ, शांति मिलेगा या कठिनाई मिलेगा, आनंद मिलेगा या तकलीफ मिलेगा? तो इसके कारण हमें तकलीफ मिल रहा है, हम खुद उसको इनवाइट करके लाते हैं, तकलीफ आओ, तकलीफ आओ, और हमको बहुत अच्छा से, हमको गिव ट्रबल मी। हरे कृष्ण। सो गिव इन द हारमोनियम, लेट्स हैव सम कीर्तन।